20,000 और 10,000 ईसा पूर्व के बीच के युग में मेसोलिथिक लोगों के समुदायों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। खानाबदोश के पक्ष में गतिहीन जीवन शैली। इसके बाद नवपाषाण काल में अधिक स्थिर समुदायों का गठन शुरू हुआ, जो मुख्य रूप से प्रजनन और विकसित कृषि का अभ्यास करते थे, साथ में शिल्प कौशल के अधिक आदिम रूपों के साथ। उस स्तर पर अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उपहार पर आधारित थी, क्योंकि व्यक्तियों का उत्पादन उनके लिए, उनके परिवार के लिए और समुदाय के लिए पर्याप्त था। उपहार का उपयोग कचरे से बचने के लिए किया गया था और बदले में किसी भी वस्तु की उम्मीद नहीं की गई थी, इसलिए एक्सचेंज या बेची गई वस्तुओं के लिए एक मूल्य स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे समय में जब समुदाय संख्या में वृद्धि हुई, संसाधन कम चलना शुरू हो सकते हैं, इसलिए उपहार अब एक निष्कर्ष नहीं होगा। केवल उन लोगों को अतिरिक्त देने की प्रवृत्ति थी जो ज्ञात थे या जो अधिक आसानी से एहसान वापस कर सकते थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व आबादी तेजी से स्थिर हो गई और समुदाय कभी बड़े हो गए। यह वहां अपरिहार्य हो गया। विशेषज्ञता, ट्रेडों और इसके साथ विनिमय करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्तियों ने अब वह सब कुछ नहीं बनाया जो उन्हें अपने लिए चाहिए था। हम अर्थव्यवस्था के एक नए रूप में आगे बढ़े। तिल बार्टर। बार्टरिंग ने सामुदायिक विकास के लिए भारी लाभ लाए, लेकिन महत्वपूर्ण सीमाएं थीं। पहले विनिमय अनुपात बनाने की आवश्यकता थी। एक सेब एक गाय के रूप में ज्यादा मूल्य के लायक नहीं हो सकता है, आंतरिक मूल्य और संभावित उपयोगों के मामले के लिए। दूसरी सीमा अधिकांश सामानों की खराब होने वाली प्रकृति थी, विशेष रूप से जैविक जो पहले जीवित थे, संग्रह सब्जियां, खेल, वध किए गए जानवर। अंत में विभाजन हमेशा संभव नहीं था, क्योंकि उदाहरण के लिए भागों में विभाजित एक भेड़ एक जीवित भेड़ के रूप में ज्यादा लायक नहीं थी। बार्टरिंग के समय माल के मूल्य पर तुलना करने के लिए कोई सार्वभौमिक आधार नहीं थे, विनिमय का एक साधन खोजने के लिए आवश्यक हो गया था, जो आमतौर पर स्वीकार किया जाता था, विभाज्य, थोड़े समय में खराब नहीं, संभवतः भंडारण योग्य और आसानी से परिवहन योग्य। सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों में गेहूं था, अधिक मूल्य के आदान प्रदान के लिए एक और अच्छा चुना गया था भेड़, लैटिन पेकस में, जिसमें से पेकुनिया निकलता है, वह पैसा है। सामाजिक सम्मेलनों के लिए धन्यवाद, गेहूं या भेड़ में भुगतान करना संभव था, यहां तक कि जो सेवाएं प्रदान करते थे, और जरूरी नहीं कि मूर्त उत्पाद। के विकास के साथ धातु विज्ञान और सदियों के बीतने पर उपयोग शुरू हुआ। सोना विनिमय के एक सार्वभौमिक माध्यम के रूप में, प्रसंस्करण और उपयोग के लिए सबसे आरामदायक आकार एक था, पहले वाले इसके साथ पैदा हुए थे। सिक्के, हालांकि प्रत्येक समुदाय की अपनी पारंपरिक मूल्यों के साथ अपनी मुद्राएं थीं, फलस्वरूप विभिन्न विनिमय अनुपात के साथ तालिकाओं का निर्माण शुरू हुआ। उस समय के सिक्के उतने ही मूल्य के थे जितने कि उन्हें बनाने वाली सामग्री प्रत्येक लेनदेन के साथ उन्हें तौलने से बचने के लिए टकसाल के दौरान सिक्के की बाहरी परिधि पर एक चक्र बनाने के लिए लगाया गया था। इस सर्कल की अनुपस्थिति ने एक नकली दिखाया होगा। छोटे मूल्य के आदान प्रदान के लिए सिक्कों के बहुत छोटे मूल्य वर्ग की आवश्यकता थी, इसे दूर करने के लिए उनका उपयोग किया गया था। गैर महान सामग्री, तांबे की तरह, तांबे के साथ सामग्री के मूल्य की तुलना में उच्च नाम मात्र मूल्य के सिक्कों का टकसाल करना संभव था। यहाँ सेनी गोरज की अवधारणा आती है, अर्थात खनन मूल्य और सिक्के के आंतरिक मूल्य के बीच का अंतर। को धन्यवाद सीनियरेज। संप्रभु कुछ भी नहीं से धन उत्पन्न कर सकते थे। धातु मिश्र धातु के सिक्कों के साथ भुगतान किए गए व्यापारियों को विनिमय से अपेक्षित सोने की सही मात्रा तक पहुंचने के लिए बड़ी मात्रा में धन का अनुरोध करने की आवश्यकता थी। की अवधारणा महंगाई। मध्य युग में यह अवधारणा को अपनाते हुए मुद्रास्फीति और जब्ती को रोकने के लिए सोचा गया था कि एक राष्ट्र या शहर एक सिक्के का खनन कर सकता है केवल अगर सोने के बराबर मात्रा को उसके खजाने के खजाने में रखा गया था। वास्तव में हालांकि इस प्रारंभिक रूप को दरकिनार करने से रोकना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। सोने का मानक के पहले रूप कागज के नोट। उन्होंने चीन में प्रकाश देखा जिसके बाद व्यापारियों द्वारा इस अभ्यास को यूरोप लाया गया। 12वीं शताब्दी से विनिमय पत्र। इन दस्तावेजों ने नकदी को बदल दिया। जिसने भी उन्हें जारी किया उसे एक मात्रा में पैसा मिला और बदले में उस पैसे को दूसरी मुद्रा में दूसरी जगह चुकाने का उपक्रम किया। को धन्यवाद विनिमय पत्रों ने व्यापारियों और सामान्य रूप से लोगों द्वारा मूल्य के परिवहन को बहुत सरल बना दिया और भौतिक सोने के आंदोलन से जुड़े जोखिम कम हो गए।